प्यावर रामचंद्र की मोर मुक्त वंशी वंशी तो वैराग की बड़ी भारी आवश्यकता है। तो प्रथम तो संसार से जब वैराग होता है और भगवान की भक्ति के प्रभाव से जब भगवान की भक्ति करे तो भक्ति के प्रभाव से भक्ति तो प्रिय लगती है और संसार से विरक्ति होती है। तुलसीदास जी कहे है कि तुलसी हरि की भक्ति में ये पांचों ने सुहास जिसे भोग निद्रा होती पर जगत प्रीति बहु भास। तुलसीदास कहे कि हरि की भक्ति में ये आरंभ के वहां जो भक्ति करे तो ये पांच बात उसको अच्छी नहीं लगती। एक तो संसार के विषय भोगों की बात अच्छी नहीं लगती और एक निद्रा की बात अच्छी नहीं लगती और एक हंसी मजाक की बात अच्छी नहीं लगती और एक संसार की प्रीति की बात अच्छी नहीं लगती। संसार के पदार्थों में जो प्रीति है ये अच्छी नहीं लगती और एक बहुत बहुत बात जो है संसारिक बात ये अच्छी नहीं लगती। तो ये पांच बात उसको नहीं सुहाती। अब वो जब आगे बढ़ता है जिस प्रकार से वैराग बढ़ता है इसी प्रकार से उपरती बढ़ती है साथ साथ के वहां वैराग को तो मतलब है कि संसार के वहां आसक्ति को अभाव और आसक्ति को नाश होना आसक्ति हट जाने और उपरति को मतलब है कि चित्त की जो वृत्ति संसार से हट जाए तो संसार से प्रीति हट जाती है तो चित्त की वृत्ति भी हट जाती है। तो जो वैराग होता है तो दूसरे आदमी जो संसार की फालतू जो बातें करते हैं वो अच्छी नहीं लगती फिर भी उसमें थोड़ा दोष रहता है तो खुद तो कर लेता है संसार की बातें दूसरे जो फालतू बात करते हैं संसार की बात करते वो तो अच्छी नहीं लगती उसमें तो वैराग रहता है और जब वैराग नहीं बढ़ता तो खुद संसार की बात कर लेता है। जब और वैराग बढ़ जाता है तो फिर खुद ही फालतू बात नहीं करता। संसार के दूसरे भाई जो फालतू बात करते हैं या गांव की निंदा करते हैं व्यर्थ की चर्चा करते हैं तो उसको अच्छी नहीं लगती खुद भी वो नहीं करता और आगे बढ़ जाता है तो बात तो नहीं करता किंतु भीतर के मां संसार के पदार्थों में भोगों में शरीर में संसार में प्रीति रहती है किंतु जब आगे बढ़ जाता है तो भीतर की जो प्रीति जो संसार से है वो ही उड़ जाती है। जब संसार से प्रीति उड़ जाती है तो चित्त के मन जो चंचलता है मन जो संसार की तरफ इधर उधर जो घूमता है चित्त की वृत्तियां जो संसार की तरफ दौड़ती है फिर वो भी आगे जाकर के बंद हो जाती है। जब संसार से प्रीति हट जाती है तो आगे जाकर चित्त की वृत्ति भी फिर हट जाती है और इस प्रकार के हटने पर भी फिर सपन के बीच के मां संसारिक स्वप्न उसको आते रहती है। संसार सपने में संसार में प्रीति रहती है संसार का संकल्प विकल्प भी होता है और ज्यादा प्रीति बढ़ जाती है तो फिर सपने के भीतर में भी संसार के पदार्थ अच्छे नहीं लगते ऐसा उसको सपने से नहीं आता और चित्त की वृत्ति संसार के वहां सपने में भी नहीं लगती परमात्मा में लगती है। परमात्मा के मां तो प्रीति हो जाती है परमात्मा में चित्त की वृत्ति लग जाती है और परमात्मा के स्वर कोई चीज उसको अच्छी लगती नहीं। जब तीव्र वैराग हो जाता है और तीव्र उपरति हो जाती है तो ये स्थिति हो जाती है। तो ये आप लोगों को मैंने क्रम बतलाया। अब दूसरी बात बतलाई जाती है कि भगवान के मिलने की जब तीव्र इच्छा हो जाती है तो भगवान मिल जाते हैं। अभी तो संसार के बीच के मां समझे कि संसार के पदार्थों की इच्छा है और साथ में भगवान की भी इच्छा है, तो आरुण के मां भगवान की इच्छा तो गौण रहती है और संसार के पदार्थों के मिलने की इच्छा उसको तीव्र रहती है। जब आगे बढ़ जाता है, भगवान के तत्व रस को समझ जाता है, भगवान के गुण प्रभाव को समझ जाता है, तो फिर भगवान की तरफ तो प्रीति अपने बढ़ती जाती है, संसार की तरफ से प्रीति हटती जाती है। तो आगे जाकर दोनों में समान प्रीति हो जाती है, भगवान में भी प्रीति, संसार में भी प्रीति। इसलिए संसार की भी पूर्णा होती है, भगवान की भी पूर्णा होती है। उसकी जो प्रीति है तो संसार में भी है, भगवान में भी, दोनों के मां है। कभी संसार की बात होती है संसार में प्रीति हो जाती है, भगवान की बात होती है भगवान में प्रीति हो जाती है, दोनों काम साथ में चलती है। इसलिए चलते चलते जब भगवान की तरफ प्रेम बढ़ जाता है तो भगवान के मिलने की इच्छा जोर पकड़ती है, तो भगवान के मिलने की इच्छा तो प्रधान हो जाती है और संसार के पदार्थों की इच्छा कम हो जाती है। संसार के मां प्रीति भी कम हो जाती है और संसार के मां भोगों की इच्छा भी कम हो जाती है। शरीर के आराम की आराम है, भोग है, रुपया है, ये संसार के पदार्थ है, इनकी तरफ में प्रीति कम होने से इच्छा भी कम हो जाती है और इसकी स्मृति भी कम हो जाती है, तो इससे कुछ वृत्तियां हटी हुई सी रहती और भगवान की तरफ में चित्त की वृत्तियां मुख्य हो जाती है, भगवान के मिलने की इच्छा मुख्य हो जाती है, भगवान के मिलने की इच्छा, भगवान में प्रीति, ये सब अपने बढ़ जाती है। संसार के मां मामूली रहती, फिर और आगे जाकर के बढ़ जाता है तो फिर संसार में प्रीति रहती ही, तो संसार की तरफ वृत्ति जाती ही, संसार के जिसे भोग अच्छे लगते ही, तो न संसार के पदार्थों की इच्छा रहती है, न उसमें प्रीति रहती है, न चित्त की वृत्ति जाती है और भगवान से ही मिलने की तीव्र इच्छा हो जाती है और भगवान की तरफ ही उसकी चित्त की वृत्ति आ जाती है और भगवान की तरफ उसका प्रेम हो जाता है। फिर एक प्रकार से उसके वहां भगवान के न मिलने से व्याकुलता बढ़ती है, गृह की व्याकुलता बढ़ती है और वो बढ़ती चली जाती है। जब भगवान के वहां अनंत प्रेम हो जाता है या यूं कहो अनंत भक्ति हो जाती है और भगवान के मिलने की तीव्र इच्छा जाग उठती है, तो फिर संसार के पदार्थ अच्छे नहीं लगते और इससे वृत्तियां एकदम संसार से हट जाती, तो वो तीव्र इच्छा है, वो तीव्र इच्छा एक प्रकार से तीव्र वैराग, तीव्र मिलने की इच्छा और बढ़ती चली जाती है अभ्यास तीव्र होने से। तो आगे जाकर के भगवान के मां अनंत प्रेम हो जाता है, विशुद्ध प्रेम हो जाता है, परम प्रेम हो जाता है। अनंत प्रेम का मतलब यह है कि भगवान के सिवा और किसी पदार्थ में प्रेम नहीं रहता और ये अनंत का मतलब है। और विशुद्ध का मतलब है कि कोई प्रकार की संसार की कामना नहीं रहती, निष्काम भाव हो जाता है। तो यह होता है साधन तीव्र होने से, तो उसका साधन भी तीव्र हो जाता है, उसकी प्रीति भी तीव्र हो जाती है भगवान में और संसार से वैराग भी तीव्र हो जाता है और संसार से उपरति भी तीव्र हो जाती है, सारी चीज तीव्र हो जाती है। तो उसको कहते हैं कि एक तीव्र संवेगा नाम आसन्न, तो तीव्र वेग वालों को फिर परमात्मा की प्राप्ति निकट ही है, फिर उससे तीव्र से भी और तीव्र हो जाता है, उसको तीव्र पर और तीव्र तम कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने कि मृदु मद अभी मात्रा का तत्व भी विशेष है, ये सूत्र आया कि तीव्र को लिया मृदु मात्रा और तीव्र तर को लिया मध्य मात्रा और तीव्र तम को लिया अधि मात्रा। बस अधि मात्रा जब हो जाती है तो फिर सूर्य की तुत भगवान मिल जाते। अपने तो एक प्रकार से संसार से वैराग भी तीव्र होना चाहिए, अपना अभ्यास भी तीव्र होना चाहिए और भगवान के वहां प्रीति भी सब तीव्र होनी चाहिए और खूब फिर उसके बाद के वहां तीव्र होकर के भगवान में प्रीति तीव्रतर हुए, संसार से वैराग रूपति तीव्रतर हुए और भगवान के मां प्रीति और मिलने की इच्छा तीव्रतर हो जाए और उसके बाद के मां तीव्रतम हो जाओ तो भगवान उसी वक्त को मिल जाते हैं। तो ये बात आपको उदाहरण से समझाई जाती है। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण चंद्र की है। तो भगवान के बीच में हम लोगों का ध्यान लगाने के ये साधन है। भगवान के मिलने की एक तीव्र इच्छा होनी चाहिए और वो एक ये भाव होना चाहिए कि भगवान के सिवा और कोई बात की इच्छा नहीं रहे और भगवान के मां प्रेम होना चाहिए, यानी भगवान से मिलने के लिए विरह की व्याकुलता होनी चाहिए। तो ध्यान तो किस प्रकार से होना चाहिए कि जैसे चकोर जो पक्षी है वो पूर्णिमा के चंद्रमा को जब देखता है तो जब तक चंद्रमा रहता है तब तक वो चंद्रमा का ध्यान ही करता रहता है, उसकी ग्रीवा जो है शुद्ध में लग जाती है जरा, किंतु वो ध्यान नहीं छोड़ता जब तक चकोर पक्षी जो है जब तक चंद्रमा दिखता रहता है वो उसका ध्यान करता ही रहता है। तो चकोर पक्षी की माँ पर अपने भगवान का ध्यान करना चाहिए और ये लीन रहना चाहिए कि भगवान के सिवा जो है और किसी की इच्छा नहीं करनी चाहिए, या किस प्रकार की, या पपैया की माफक हो। पपैया जो है चातक जिसको कहते हैं वो आकाश से जो वर्षा बरसती है उसी को वो ग्रहण करता है। जमी के वहां यदि गंगा जल भी रहता है तो उसके काम करने वो नहीं छूता। तो उसके नियम है कि आकाश से जल बरसे उसी को लेना, भूमि पर पड़े जल को नहीं पीना। और वो पी भी नहीं सकता। बतलाया जाता है उसके गले में छेद रहता है, वो भूमि का जो पीए तो उसके गले के छेद मांग निकल जाता, पेट में नहीं जाता। वो जब चांद को ऊपर की तरफ में करता है और वर्षा से बूंदे बरसती है, वो उसके सीधी अपने पेट में जाती है। तो इस वास्ते चातक का ये नियम है कि आकाश से जो बरसे जल उसको ही पीना और भूमि का जल नहीं पीना। इस प्रकार से अपने जो नियम रहना चाहिए कि भगवान के सिवा और कोई चीज के मिलने की इच्छा नहीं करनी। संसार का जो पदार्थ है इनके मिलने की इच्छा करे ही, केवल भगवान के मिलने की इच्छा करे। जैसे चातक जो है वो आपने भूमि के दिल की इच्छा नहीं करते, और जिले में ऐसा व्याकुल हो है कि जैसे मच्छी व्याकुल हो जाती है तो वो तड़प करके प्राण ही दे देती, जीती नहीं, ऐसे भगवान के बिना अपना जीना ही असल व्यर्थ है। इस प्रकार से थी आपने चित्त के मां दिल की व्याकुलता होनी चाहिए। अब ये बात बतलाई जाती है कि भाई ध्यान इस प्रकार का जो बतलाया है तो बहुत ठीक है। तो ध्यान के विषय में ये जो उदाहरण दिया चकोर पक्षी का तो ठीक है, किंतु मनुष्यों के बीच के मां एक प्रकार से ये बात बताई जाओ तो किस प्रकार से ध्यान परमात्मा करना चाहिए। जैसे सीता जी ने एक प्रकार से भगवान राम का ध्यान किया, वह राम का जब ध्यान करती थी तो भगवान उसके सन्मुख रहते थे, तो वो भगवान को देखती रहती थी। जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता ही रहता है, ऐसे सीता जी जो है तो भगवान को देखती रहती थी। जब सीता जी वन में गई है तो उसके पहले भगवान को यही बात कही है कि जैसे आपने चकोर पक्षी आपने समझो कि चंद्रमा को देखता रहता है, ऐसे आपके चकोर पक्षी की माफक आपके मुख चंद्र को मैं देखती रहूंगी, तो क्या फिर उस समय में मुझको कोई दुख होगा? मैं दुख पास में नहीं आ सकता। इस प्रकार से भगवान के मुखारविंद को हम मन से देखते रहे, मन रूपी नेत्रों से। भगवान का जो मुखारविंद है वो चंद्रमा के समान, और हमारा मन है वो चकोर पक्षी के समान। दूसरी बात यह है कि भंवर जिस प्रकार से पुष्प के ऊपर आज दमड़ाता है और वहां पुष्प पर बैठ करके और अमृत का पान करता है, इस प्रकार से थी भगवान जिस समय में मिलते हैं तो भक्त अपने नेत्रों को भगवान के मुखारविंद के ऊपर स्थिर कर देता है, जैसे भंवरा उड़ता हुआ और कमल के पुष्प पर बैठ जाता है। तो कमल के पुष्प की जो तो भगवान का मुखारविंद हुआ और भंवर की जो अपने नेत्र हुए, और जब भगवान जब तक नहीं मिलते तो वहां हमारा जो मन है उसको आपने ध्यानावस्था के वहां भगवान के मुख के ऊपर आपने बढ़ा देना चाहिए। और जैसे भंवर जो समझो कि वहां मकरंद का पान करता है, उस का रस पान करता है, ऐसे भगवान के मुखारविंद का रस पान करना चाहिए, माने उसमें रस का आस्वादन लेना चाहिए। तो इस प्रकार का ध्यान और साधकों में किसने किया कि जैसे ध्रुवजी महाराज ने भगवान का जो चतुर्भुज जो स्वरूप है उसका ऐसा ध्यान किया कि एकदम उसमें तन्मय हो गए। और जैसे भगवान श्री राम का ध्यान किया सुतीक्ष्ण जी भगवान के राम के ध्यान में ऐसे मस्त हो गए कि एक प्रकार से वह रस्ता में बैठ गए और उनके शरीर में रोमांच उठे। तो इसी प्रकार से थी हम लोगों को भगवान का ध्यान करना चाहिए सुतीक्ष्ण के समान, दृष्टि के समान। और भगवान के गृह की जो व्याकुलता है वो कैसी होनी चाहिए, जैसे मच्छी जो है तो आपने जल के बिना व्याकुल होकर के तरफ करके मर जाती, इस प्रकार से गृह की व्याकुलता होनी चाहिए। तो ये गृह की व्याकुलता के उदाहरण के लिए हम इसका उदाहरण रखें तो गृह की व्याकुलता के लिए बहुत से उदाहरण हैं। जैसे भरतजी महाराज के हृदय में गृह की व्याकुलता हुई, भगवान राम के लिए इतने व्याकुल हुए कि भगवान पूछने में विलम्ब करते तो उसके प्राण ये तो आपने चले जाते। राम वीर सागर में है भरत मगन मन हो, धरी पवन सुत आए गए दिन पोत, राम के दिल में भरत जी कैसे व्याकुल हो गए थे कि राम का जो गृह माना जो वेद है वो है एक सागर, और भक्त का जो मन है वो गृह के बीच के माँ मग्न हो गया था, उसके माँ मन है तो एकदम गृह में डूब गया था। ऐसी अवस्था के माँ हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां आ पहुंचे, जैसे नौका डूबते हुए के लिए नौका आ पहुंचती, तो भरजी महाराज यहां गृह रूप सागर में डूब रहे थे, हनुमान जी उसे को डूबते को बचाने के लिए नौका रूप हुए। ऐसी जो गृह की जो व्याकुलता है उस वहां पर हम लोगों को होना चाहिए, हम लोगों में ऐसी गृह की व्याकुलता होनी चाहिए। दूसरा उदाहरण है कि रुक्मिणी को जब शिशुपाल बनाने के लिए आया है तो उस वक्त के बीच से वहां वो बहुत ही व्याकुल हुई भगवान श्री कृष्ण जी के लिए, और मन ही मन में विचार करने लगी कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि जो एक प्रकार से मुझको ब्याहने के लिए शिशुपाल आया, तो भगवान आने में क्यों विलम्ब कर रहे हैं, मैं शिशुपाल के साथ में कभी विवाह नहीं करूंगी, अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी, किंतु शिशुपाल के साथ में कभी विवाद नहीं करूंगी। नारद जी उनको देश